थोड़ी सी क्वालिटी भी बेहतर हुई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। वो बयान आप मेजर खाले साहब हजरत जी की मजलिस में सुनाते रहते हैं, जो साथी वो मजालिस की कार्रवाई सुनते हैं, मेजर अपने जायद अली जायद साहब भेजते हैं साथियों को, जो साथी सुनते हैं उन्हें पता है कि वो बयान आप में क्या क्या कुछ अदर शेखुल मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह के बयान किस अंदाज में लिखे जा रहे हैं। उन्होंने लिखे जैसे उनको समझ आए, मैंने उनको फिर दोबारा सुनने की कोशिश की और उसके साथ उन्होंने टाइप भी करवाई और टाइप करवा के वो दोनों चीज़ें मुझे दे दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हजर शेखुल मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, जो अल्फाज हैं वही अल्फाज बयान के अंदर आएँ और जिस तरतीब में उन्होंने फरमाए हैं उसी तरतीब में आएँ। फिर ये कि अदर शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह के अक्सर बयान आ गए हैं वो पंजाबी में हैं, और पंजाबी जो है अदर शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह की वो वही समझता है जिसकी ज़ुबान हजरत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान जैसी ज़ुबान हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ुबान जो मेरे आबाई गाँव की है वो अदर शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह के बोली के साथ बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए मुझे काफ़ी बातें बेहतर समझ आती हैं दूसरों की नस्बत। तो उसकी मैं इसलाह कर रहा हूँ, तो उसमें एक इसलाह में एक जगह पे एक वाक़िया अदर शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है। दुआ करें कि ये बयान जो मैं लिख रहा हूँ इस पर अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत अता करना और मैं जल्द अज जल्द इसको किताबी शक्ल में ला के आप सबसे की खिदमत में पेश करूँ। कोशिश यही है, जितना वक्त मुझे मिलता है मैं उस पर लगाता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इतनी हिम्मत नहीं है अभी मैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हिम्मत भी दे और वक्त में बरकत भी दे और वो तौफीक अल्लाह पाक अता फरमाए कि उस किताब को हम उन बयान को किताबी शक्ल में हम छाप सकें। उसमें एक वाक़िया हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि वो एक रात को उठे ताजद के वक्त और उन्होंने अल्लाह ताला की खिदमत में अर्ज़ की, या अल्लाह तेरी बादशाही बहुत बड़ी बादशाही है, बहुत बड़ी तेरी रियाया है, बहुत ज़्यादा मखलूक है तेरी, बंदे हैं तेरे, लेकिन इस वक्त ये ताज्जुद का जो वक्त है या अल्लाह ये बहुत कम लोग जो हैं उनको उठना नसीब होता है, इसमें बहुत कम लोग उठते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया भाई यजीद बस्तामी जो शहनशाह होते हैं ना वो हर किसी के साथ राज़ो नियाज की बातें नहीं करते। भाई यजीद बुस्तामी जो बादशाह होते हैं, जो शहनशाह होते हैं, वो हर किसी के साथ राजो न्याज की बातें नहीं करते। तो ये बहुत ही चुने हुए लोग हैं जिन्हें अल्लाह पाक अपने उन खास बंदों में शामिल फरमाता है, जो उस वक्त के ऊपर, जो राजो न्याज का वक्त है, उस वक्त में अल्लाह ताला के सामने हाजिर होते हैं और अपनी इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से अपनी आरजू करते हैं, अपनी बयान करते हैं, अपनी तमन्नाएं बयान करते हैं, अपनी दरख्वास्तें पेश करते हैं, अपनी इबादत पेश करते हैं। बहुत कलील लोग हैं इस जमात का, ये तो रहा इम्तियाज है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे हज़रत शेख़ुल मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के इंतहाई पाबंद थे। उन्हीं के वो असरार हैं जो हमारे मशायख हज़रत बेग साहब और शाह साहब के अंदर आए, और वही असरार फिर जमात के अंदर मुंतकिल होते हैं। तो जो बंदा इस जमात के साथ सही तरह से जुड़ जाता है, खुलूस के साथ जुड़ जाता है, मोहब्बत के साथ जुड़ जाता है, उसको ये इनाम मिलता है। ये तहज्जुद की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी, ये हज़रत शेख़ुल मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह के बयान में मैंने एक और जगह पर सुना कि तहज्जुद जो है ये फ़र्ज़ थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकियों के लिए ये नफली इबादत है। लेकिन किस किस को नसीब होती है? तो हमें जो नसीब होती है, हमारा अपना कमाल कोई नहीं है। बंदा कहे जी मैं बड़ा तहज्जुद गुजार हूँ, बड़ा इबादत गुजार हूँ, कुछ भी नहीं है। दो दिन आप छोड़ के देखें, देखकर खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे, लेकर जिस बंदे से दो दिन छूटे, तीसरे दिन तहज्जुद जाएंगे। खाने में ज़रा सारी बेहतियाती कर लें, ये शादियों ब्याहों के ऊपर हम खाने खाते हैं, ये खाने पता नहीं किसके हाथ के पके हुए होते हैं, वो मुर्गियाँ पता नहीं किसके हाथ की ज़िबा हुई हुई होती हैं, ईसाई यहूदी और ये जो हैं स्वीपर चूड़े ये ज़िबा करते हैं और सिख ज़िबा करते हैं और हम उनका ज़िबा को किया हुआ खाते हैं, तो उसमें क्या असरात होंगे? तो वो जो शादियों के खाने हम खाते आते हैं, कई साथी बताते हैं कि तहज्जुद मिस हो गई। क्यों तहज्जुद मिस हो गई? वो हराम का लुकमा अंदर गया, उसके असरात अंदर गए और उसने जो है सफाया कर दिया। तो शेख़ुल मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे कि नबूवत के दो पहलू हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दो पहलू हैं, तारीफ तमाम नबूवतों के दो पहलू हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास तौर पर एक ज़ाहिरी पहलू है। ज़ाहिरी पहलू जो है, एक ज़ाहिरी है, दूसरा बातनी है। ज़ाहिर और बातिन सब समझते हैं कि नहीं समझते? समझते हैं ना। एक ज़ाहिरी पहलू है, जैसे हमारा ये ज़ाहिर जिस्म है, और एक हमारा बातिन है जो हमारी रूह है। तो एक ज़ाहिरी पहलू है और दूसरा बातनी पहलू है। ज़ाहिरी पहलू इल्मे नबूवत है और बातनी पहलू नूरे नबूवत है। इल्मे नबूवत जो है, इसमें हदायत भी है, हज़रत शेख़ुल मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। ये इन्हीं बयानात से मैं जो है ना, वो जो मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने, कि ये फरमाते हैं कि ज़ाहिरी पहलू जो है, इसमें हदायत भी है और इसमें गुमराही भी है। युदिल्लु बिहि कसीरा व यहदी बिहि कसीरा। ये कुरान करीम जो पढ़ते हैं, बहुत सारे जो हैं इससे हदायत हासिल करते हैं, बहुत सारे गुमराह होते हैं। तो ये ज़ाहिरी पहलू है नबूवत का, इल्मे नबूवत जो है, इसमें हदायत भी है और गुमराही भी है। जो नूरे नबूवत है, हज़रत शेख़ुल मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह ने अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं, जो नूरे नबूवत है, ये निरी हिदायत है, निरी हिदायत, यानी हदायत ही हदायत है इसके अंदर। और ये जो हमें हासिल होता है, अल्लाह पाक हमारे ऊपर करम फरमाते हैं, हम जो सीधे रास्ते पर आ जाते हैं, हमने जितने भी लोग आते हैं इसमें और खुलूस के साथ शामिल होते हैं, हदायत के रास्ते पर आ जाते हैं, वो सोचें अपने बारे में कि पहले क्या था, अब क्या है। कि हमारे अंदर कितना फर्क आया, किस वजह से आया, ये उस नूरे नबूवत से आया जो हमारे सीनों में हमारे मशाइख ने मुंतकिल फरमाई। ये सीना में सीना ये दौलत चलती है, शेख के बगैर ये चीज नहीं हासिल होती। शेख अपने सीने से जो उन्होंने हासिल किया हुआ होता है उस सीने से आगे मुंतकिल करते हैं। ये कल्ब की दौलत है, दिल की दौलत है, और कल्ब के ऊपर कुरान करीम नाजिल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर के ऊपर कुरान करीम नाजिल हुआ है। वो कौन सी आयत है हजरत? अला कल्ब का, आपके कल्ब के ऊपर मैंने इसको नाजिल। तो ये कल्ब के ऊपर नाजिल होता है, और कल्ब अंबिया का पाक होता है, उस पे वो पाक चीज जब नाजिल होती है तो फिर वो नूरे नबूवत बनता है, और वो नूरे नबूवत पर सबको तकसीम होती है। वो वहां से फिर साहबा को मिला, साहबा से ताबईन को मिला, ताबईन से तबा ताबईन को मिला, सिलसिला चलते चलते चले हमारे मशाइख से होते होते हमारे शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह के सीने मुबारक पे आके हजरत बेग साहब और शाह साहब के सीने पे आके फिर आगे मुंतकिल होते। इसके लिए अहलियत पैदा करनी पड़ती है, इसके लिए अहलियत पैदा करनी पड़ती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, खुलूस लेके आना पड़ता है। खालस तलब होती है तो ये चीज मिलती है, कुछ और तलब लेकर आते हैं तो फिर वही मिलता है जिसकी तलब लेकर। फिर मुझे माल दौलत मिल जाए, मेरे बरकत आ जाए, मेरी औलाद आ जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इसलिए आकर लेकर में बैठे हैं, बुजुर्गों के पास आए हैं कि बुजुर्गों के बहुत मनाकिब सुने हैं कि उनके साथ जो मिलता है वो जो दुआएं करते हैं उसके लिए उसको फायदा होता है, तो वो फिर सिर्फ वही कुछ हासिल करेगा। जो नूरे नबूवत लेने के लिए आएगा, जिसके अंदर ये तलब होगी, उसको फिर इंशाल्लाह नूरे नबूवत मिलेगा। अब इसमें अहलियत क्या पैदा करनी है? इल्मे नबूवत जो है, हज़रत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, फरमाते हैं अक्सर कई बयानात में है कि इल्मे नबूवत जो है, जिसमें हदायत भी है और गुमराही भी है, ये इल्मे नबूवत जो है ये काफिर मुशरिक बेदीन हिंदू सिख ईसाई कोई भी हासिल कर सकता है। ये जो जाहिरी पहलू है इल्मे नबूवत जो है, ये काफिर मुशरिक सिख ईसाई कोई भी हासिल कर सकता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। ये मुनाजरों के लिए आते थे जब अंग्रेज का जमाना था, ईसाई पादरी मुनाजरों के लिए आते थे और कुरानी आयात याद की हुई होती थी और कुरान का सबक और इलम हासिल किया हुआ होता था और मुनाजरे करते थे हमारे मुसलमान और हमारे साथ, और कई जगह पर उनको शिकस्त भी दे देते थे, इतना उनके पास इलम था। कहां से आया? इल्मे नबूवत है ना, उन ईसाइयों ने हासिल किया और आके पादरियों ने मुनाजरे किए यहां अंग्रेज के द्वारा। तो ये इल्म नबूवत जो है ये काफिर दूसरे सिख ईसाई कोई भी हासिल कर सकता है। नूरे नबूवत अदल शक्ल मुकर्रम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि काफिर तो काफिर रह गया, गुनाहगार मुसलमान भी नहीं हासिल कर सकता। काफिर तो काफिर रह गया, गुनाहगार मुसलमान भी नूरे नबूवत को हासिल नहीं कर सकता। पहले उसे तौबा करनी है, अल्लाह ताला से माफी मांगनी है, अपने गुनाह जो दिल के ऊपर जंग चढ़ा हुआ है गुनाहों का, उस जंग को उतारना होता है। और जब ये सारा कुछ करता है तो फिर उसके बाद उसको नूरे नबूवत मिलना शुरू हो जाता है, और जब मिलता है तो फिर निरी हिदायत, फिर ये सारे असरात पैदा होते हैं जो हमारे अंदर हमें नजर आते हैं। लेकिन जब ये असरात पैदा होते हैं उसके बाद फिर हमें एहसास तो करना चाहिए, सोचना तो चाहिए कि एक चीज हमें हासिल हुई है, अब हम उसकी हिफाजत भी करें। आपके पास अगर कोई कीमती चीज हो, घर में बहुत सारा पैसा 1 करोड़ रुपया कहीं से आ जाए, तो आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। आपको ये फिक्र लगी होगी कि मैं किसी तरीके से ये 1 करोड़ रुपया जो है ना, इसको मैं संभालूँ, को तिजोरी लूँ, क्या करूँ, कैसे, और सारी रात आप बैठ के पैरा देंगे उसका, 1 करोड़ रुपया कोई डाकू चोर न ले जाए मेरे से। उससे करोड़ हा, अरब हा, पदम हा गुना ज्यादा कीमती दौलत अल्लाह ताला ने अगर हमारे कलूब के अंदर डाल दी है, तो क्या हमें उसकी हिफाजत नहीं करनी चाहिए? हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए? क्या हम बेफिक्र सोए अपने आमाल की कैद ना करें? हदीस के मफहूम में आता है कि बंदा एक गुना करता है, दिल के ऊपर एक स्याह धब्बा लगता है, फिर और गुनाह करता है और धब्बा लगता है, और गुनाह करता है और धब्बा लगता है। अगर अस्तगफार ना करे, तौबा अस्तगफार ना करे, तो वो दिल काला हो जाता है, इतना स्याह हो जाता है कि आखिर में जाके उसमें से नूरे हिदायत जो है वो भी नहीं गुजरता उसके अंदर से, मोर लग जाती। तो अगर बंदा गुनाह पे गुनाह किए जाए, झूठ पे झूठ बोले जाए, धोखे पे धोखा दिया जाए, देता जाए, लोगों के माल खाता जाए, माल ले और वापस कोई ना करे, आजकल के मुसलमानों ने मामलात को दीन का हिस्सा ही नहीं समझा, वो समझते ये और है, दीन और है। हम अपने मामलात की अगर कैद नहीं करेंगे, हराम खाएंगे, वो सेल जो है कालक हमारे अंदर जाएगी, हम अपनी खुराक की परवाह नहीं करेंगे, होटलों में बैठ के खाने खाएंगे, कवे खाएंगे, मुर्गियां नहीं कवे खिलाते हैं कई होटलों वाले, कुत्ते खिलाते हैं कई होटलों वाले, और लोग बड़े शौक से वो खाना खाते हैं। हमारे मुर्शिदाबाद के रास्ते में पिंडी से जाए तो एक जगह पे एक होटल है, बहुत मशहूर हो गया था वो, बड़ी दुनिया वहां जाती थी, आखिर में वो पकड़ा गया, कुत्ते खिलाता था रोज, तो वो खा के फिर हमारा होटलों वाला खाना खा के हमारा क्या हाल, कालक आएगी या नहीं है, सही आएगी या नहीं है? तो हम जो खाते हैं ये खून बनता है, ये खून अगर हराम बना हुआ है, स्याह बना हुआ है, वो कल्ब में से जब गुजरेगा तो कल्ब के अंदर जो वो अल्लाह ताला ने हमारे जौहर रखा हुआ है कल्ब के अंदर, उस जौहर के ऊपर कालक चढ़नी शुरू हो जाएगी। अब इसका इलाज क्या है? अगर कोई गंदगी खा ली है, गलती से खा ली है, या बेहतियाती से खा ली है, तो उसका इलाज ये है कि जिक्र किया जाए, कुट के किया जाए, जरबे दबा के लगाई जाए, और फिर उसके बाद मुराकबा भी खूब गहरा किया जाए, तो ये फिर स्याही जो है ये उतरना शुरू हो जाती है। और सुबह और शाम दो टाइम अगर जिक्र नहीं करता बंदा, तो गाफिलीन में शुमार हो जाता है उसका, यानी कि उसका कल्ब जो है गाफिल हो जाता है, उसके ऊपर ऐसी स्याही चढ़ जाती है, सफाई नहीं होती, उसके ऊपर जंग चढ़ जाता है, नूरे नबूवत उसके अंदर से नहीं गुजरता, जो हमें अता हुआ है वो रुक जाता है, वो आगे चलता नहीं है। मैंने पहले किसी जगह पे ये मिसाल सुनाई थी, मुझे याद नहीं है कहाँ पे सुनाई थी, मेरे घर में, हर घर में आजकल UPS लगा हुआ है, UPS एक बैटरी के ऊपर काम करता है, बैटरी के टर्मिनल जो हैं वो लगाते हैं उसके साथ, UPS के साथ, तो UPS चलता है, बैटरी को चार्ज भी करता है, फिर बैटरी जो है वो आपको आगे बिजली देती है जब पीछे से बिजली बंद हो जाती है। तो मेरे घर में भी एक UPS लगा हुआ है। एक दफ़ा क्या हुआ कि बिजली गई तो 1-2 मिनट के बाद UPS ने जवाब दे दिया, बिजली बंद। दो दफ़ा हुआ तो घर वाली पीछे पड़ गई कि भाई ये इसको ठीक कराएं, गर्मियाँ हैं, पंखे नहीं चलेंगे तो गर्मी से कैसे गुजारा करें, बैटरी नहीं लेकर आए। और मैंने अपने तौर पर ही वो उसका टर्मिनल जो है ना वो खोलने के लिए मैं ऊपर चढ़ा गया, जब बैटरी रखी हुई थी और टर्मिनल मैंने उसका खोलने के लिए रेंच, जब मैंने उसके पास मैं गया, रेंच मैंने लगाया, उसको देखा, उसके ऊपर तो इतना जंग, इतना मोटा जंग चढ़ा हुआ है नीले से रंग का, इतना मोटा जंग उस टर्मिनल के ऊपर चढ़ा। मैंने वो जंग जो है उसको ठोक ठाक के उसके रेंच के साथ ही उसको साफ सूफ करके, फिर मैंने उसको रेगमार के साथ साफ करके, जैली लगाते हैं जैली लगा के, फिर मैंने उसको दोबारा वापस टर्मिनल जोड़ के तो मैंने उसको चलाया। पहले दिन उसने एक घंटा बिजली दी, दूसरे दिन दो घंटे, फिर तीसरे दिन ठीक चल पड़ा काम के। वो जो जंग चढ़ा हुआ था टर्मिनल के ऊपर, उस जंग की वजह से करंट आगे जा नहीं रही थी। हजरत जी तवज्जो फरमाए, सारे साथी अक्सर साथी कहते हैं हजरत जी तवज्जो फरमाए, हजरत जी फरमाते मैं तो तवज्जो कर रहा हूं, तुम तवज्जो करो, मेरी तवज्जो तो कायम है, तुम तवज्जो करो। हमारे टर्मिनल के ऊपर जंग चढ़ा हुआ है, वो पीछे से जो करंट आ रही है वो आगे जा ही नहीं रही, चार्जिंग कैसे होगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी तो लोड कैसे उठाएगी। तो हमारे दिलों के ऊपर अगर गुनाहों का जंग चढ़ जाता है, हम उसी सफाई का बंदोबस्त नहीं करते, दो टाइम जिक्र बाकायदगी के साथ नहीं करते, वो जंग उतरता नहीं है। जब जंग नहीं उतरेगा तो नूरे नबूवत आगे जाएगा कैसे, नहीं जाएगा तो अमाल में बदअमाली शुरू हो जाएगी, तहज्जुद में सोनी शुरू हो जाएगी, नमाजों में सुस्ती आ जाएगी, नमाजों में ध्यान बट जाएगा, ध्यान उड़ जाएगा नमाज में। आपने अपने आप को टेस्ट करना है अगर किसी भी साथी ने कि मेरी क्या कैफियत है, तो नमाज में अपने आप से पूछे कि तेरी नमाज में क्या कैफियत है, कैसे पढ़ रहे हो, ध्यान कितना है तेरा। अगर अल्लाह ताला के साथ ध्यान जुड़ रहा है, नमाज के दौरान ध्यान कायम हो रहा है और अल्लाह ताला के साथ बंदा बातें कर रहा है, तो समझे कि हाँ मेरी कैफियत ठीक है। जिस वक्त ये कैफियत ढीली होनी शुरू हो जाए, अपने आप पर गौर करें, मैंने क्या गलती की है, क्या मैंने कोई गलत चीज खा ली है, या मैंने कोई मशायख की हुक्म वदूली की है, या मैंने कोई और ऐसी गलती की है, या जिक्र में सुस्ती की है। सिर्फ जिक्र में भी हम आदत सी बन गई है, हालांकि बताया मशायख ने यह है कि कभी अगर बहुत मजबूर हो गए हैं आप, आपके पास वक्त नहीं है, तो कम से कम 5-10 मिनट जिक्र जरूर कर लें, हाजिरी लग जाए। हम उसको आदत नहीं बना, रूटीन ही बना ली है, 5-10 मिनट जरबे लगाई, 5-7 मिनट मुराकबा किया और ये जब हो फिर टेलीफोन लेके बैठे हैं, घंटा घंटा चार्जिंग पे लगाया हुआ है, चार्ज नहीं होता, फिर देख रहे हैं चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, फिर देखते हैं चार्ज हुआ या नहीं हुआ, घंटे में ये टेलीफोन नहीं चार्ज होते। हम 10 मिनट में समझते हैं कि हमारा जो है ना वो बैटरी हमारी चार्ज हो गई है, वो हमारा काम चल पा, नहीं चल पा। जो मशायख ने वक्त जितना बताया वो वक्त लगाए, दो टाइम बाकायदगी के साथ जिक्र करेंगे, तब ये जंग उतरेगा, तब ये गुनाहों का जंग उतरेगा। अल्लाह तरीन अस्तगफार जो है वो ये जिक्र है। जंग किससे उतरता है, गुनाहों से, गुनाहों के जो जंग लगता है, सेंध लगती है, वो किससे उतरती है, अस्तगफार से। और ये अल्लाह तरीन अस्तगफार है। वाइजा फालू फाइशन और जलम अनफसाउ फजगुरु, अपने आप पर कुछ जुलम कर बैठता है, कुछ ज्यादती कर बैठता है, गलत कर बैठता है, गुनाह कर बैठता है, फस जकरुल्लाह, जकरुल्लाह वो जिक्र करता है, फस तगफरूल ज़ुनूबे, तो अल्लाह ताला से गुनाह माफ करवा, उधर ही फौरन उधर ही आगे साथ ही फस तगफरूल ज़ुनूबे, कि जो ही वो जकरुल्लाह जिक्र करता है उसे गुनाह माफ हो। ये आला तरीन अस्तगफार है, बेहतरीन अस्तगफार है। रोजा इनका जिक्र गलती हो जाए 3 टाइम करें, गलती हो जाए 4 टाइम करें, इस स्याही को उतारें, ये स्याही उतरेगी। ये टर्मिनल के ऊपर से जो मैंने मिसाल दी है बैटरी की, वो टर्मिनल से जंग उतारा मैंने तो उसने काम करना शुरू कर दिया, ये टर्मिनल के ऊपर से जंग उतरेगा तो उसके बाद जो है ये बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी और काम हमारे चलने शुरू हो जाएंगे। काम कौन से, दुनिया के भी और आखिरत के भी। ये सिर्फ आखिरत नहीं हमें मिलती, हजरत जी के पास किसी बंदे ने बात की कि जी वो हजरत ने सुनाया, मेरे ख्याल है हजरत जी एक साहब ने, अपनी मजलिस में कि जी साजी ने कहा कि बड़ी तंदरुस्ती है, हजरत ने फरमाया जो दो टाइम जिक्र बाकायदगी के साथ करता है तंदरुस्ती रह ही नहीं सकती, तंदरुस्ती रह ही नहीं सकती। रिजक की बरकत के लिए इस्तग़फार बताते हैं। मैंने अभी आपको जो आयत पढ़ के सुनाई है, आपके साथ में मेरी इस्लाम भी फरमाई है, जिक्र करना जो है ये आला तरीन इस्तग़फार है। जिक्र में रिस्क में बरकत कैसे नहीं है? साथी होते हैं दो चार दिन पहले मोटरसाइकिल पे होते हैं, फिर कार पे आते हैं, फिर नई कार पे आ जाते हैं, फिर छोटा करोला पे आ जाते हैं, फिर बेहतरीन गाड़ियां अल्लाह ताला देने शुरू कर देते हैं। वो बरकत आती है, दुनिया भी मिलती है आखिरत भी मिलती है। सारी दुनिया की सारे जहान की बरकतें जो हैं वो अल्लाह ताला के नाम में हैं, और ये अल्लाह ताला के नाम का जो हम जिक्र करते हैं इससे हमें ये सारे फायदे हासिल। ये नूरे नबूवत जो है ये हर किसी के बस का रोग नहीं है, हर किसी के नसीब में भी नहीं है। तो शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अक्सर उलमा इकराम इससे महरूम रहते हैं, ज़ाहिरी पहलू हासिल कर लेते हैं, बातनी पहलू जो है उससे महरूम रहते हैं। इसीलिए उनको दावत दें तो फिर बहानों के शक्ल में एतराज़ात शुरू कर देते हैं, जैसे कल सुना रहे थे आमिर साहब, तो जो मौलवी साहब उनके बच्चों को पढ़ाते थे उन्होंने वो एतराज़ करते थे और अजीब व गरीब सवाल करते थे आज। तो वो इसलिए करते हैं ताकि ना करने का एक बहाना मिले, नहीं करना चाहते, नहीं कोशिश करना चाहते, नहीं मेहनत करना चाहते, अपनी उस मस्तक से नीचे नहीं उतरना चाहते कि किसी के पास जाएं, उसके पास बैठे, उसके जिक्र सीखें। इनको वो हासिल नहीं होता, हासिल करेंगे तो बहुत ऊंचे दर्जे पर जाएंगे, दूसरों की नस्बत ज्यादा बेहतर उनको फायदा ज्यादा होगा, लेकिन करना जो है ये हमने है, करना हमने है। मुर्शिद का काम होता है रास्ता बता देना, मुरीद का काम है उस रास्ते पे चलना। अगर मुरीद चलेगा तो फायदा उठाएगा और अपना फायदा होगा उसका, अपना फायदा है हमारे, हमने अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। अपनी कब्र में हमने अकेले जाना है, कोई हमें छुड़ाने वाला नहीं होगा। तो उसके लिए ये सारी मेहनत है, ये सारी कोशिश है, ये सारे इस्तेमाल है। दूसरे सिलसिलों में इस कदर मुजाहदात कराए जाते हैं कि बयान से बाहर है। अगर आप पढ़ें किताबें आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरीके से कितनी मेहनत करा के ये थोड़ी सी दौलत देते हैं। कुत्ते जो हैं उनकी जंजीरें पकड़ा देते हैं शिकारी कुत्तों की और भगाते हैं और वो गिराते हैं उनको और वो उनके घुटने और कोहनियाँ जख्मी हो जाती हैं, लहू लहान हो जाती हैं, गोबर उठवाते हैं और जूतियां जो हैं वो उठवाते हैं, सीधी करवाते हैं, लैट्रीनें साफ करवाते हैं। इस तरह के मुजाहदे कराते हैं उन्होंने रोटी दी, रो भी किसी किसी को, हर किसी को। हमारे मुर्शिद रहमतुल्लाह है और या के शहनशाह है, और या के शहनशाह है, तो शहनशाह की जो औलाद होती है वो क्या होती है? शहजादे होते हैं, शहजादे होते हैं ना शहनशाह की औलाद। तो शहजादों को बड़े नाजो नाम में पाला जाता है। हमारे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं रखा, वो मुजाहदात ही रखे हमारे लिए। हमारे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए सिर्फ दो मुजाहदात रखे, दो टाइम जिक्र बाकायदगी के साथ, ये मुजाहदा है एक, और मुजाहदा नंबर दो इज्तमात में शामिल है। हर चीज को छोड़ के, तमाम दुनिया को छोड़ के, सारे मामलात को एक तरफ करके जब इज्तमा के लिए आ जाना बहुत बड़ा मुजाहदा है। ये आना जो है ये आप खुश नसीब हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें यहाँ आने की तौफीक दी। ये दो मुजाहिदे हैं टोटल जो हजरत हमसे करवाते हैं, और दो ही शर्तें हैं जो लगाते हैं कि झूठ मत बोलो, जुबान को झूठ से बचाओ, पेट को हराम से बचाओ। दो ही शर्तें फरमाते हैं, दूसरे सिलसिलों में बड़ी बड़ी शर्तें रखते हैं, मेरी सिर्फ दो ही शर्तें, जुबान को झूठ से बचाओ, पेट को हराम से, दो टाइम जिक्र करो, इज्तमात में शामिल होके अपने शेख के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करो, ताकि वो कनेक्शन जो है जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। फ़ायदा किसका होगा? मेरा फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा होगा, किसी का फ़ायदा इसमें हजरत जी ने वाज़े फरमा दिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई तलब नहीं है, ना मुझे हाजत है और ना मुझे तलब है। जिस किसी ने भी जो कुछ भी हासिल करना है अपने लिए हासिल करना है, अपनी आदत संवारनी है, अपनी कब्र संवारनी है, हमेशा की जिंदगी है आगे। मैं 70 साल गुजार बैठा हूँ, ऐसे लगता है जैसे कल की बात है, माँ ने मम्मी ने नाक साफ करके बस्ता गले में डाला था, कागजात को 70 साल ऐसे गुजरे। मेरे तो 70 साल हैं, नूह अलैहि सलाम की 1600 साल उम्र थी। हज़रत शेख अल मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बयान में फरमाया 1600 साल उनको उम्र मिली, और वो मौजदा थे, उनका बदन ना तो डिके हुआ जैसे हमारा दांत गिर जाते हैं और आंखें खराब हो जाती हैं, उनका बदन सलामत रहा आखिर तक, इसी तरह तमाम आज़ा कवा बरकरार रहे। 1600 साल के बाद जब दुनिया से रुखसत हुए तो पूछा गया, सबसे लंबी उम्र पाने वाले नबी मफ़ूम ये है, सबसे लंबी उम्र पाने वाले नबी आपने ज़िंदगी को कैसे पाया? फरमाया एक मकान की तरह, जिसके एक दरवाजे से मैं अंदर दाखिल हूँ और दूसरे दरवाजे से बाहर। हम में से तो 100 पूरे करने वाले में आखिर कोई कोई होता है, लाखों में कोई एक आध होता है जो 100 पूरे करता है। तो ये जो थोड़ी सी जिंदगी है ये मिली है किसके लिए? आखिरत बनाने के लिए, दुनिया कमाने के लिए नहीं मिली। या एक और जिंदगी मिलेगी कि ये दुनिया कमाने के लिए और वो आखिरत कमाने के लिए होगी? दूसरी जिंदगी मिलनी है किसी के पास? सर्टिफिकेट एक और जिंदगी भी मिलेगी, तो फिर इसको हम क्यों जाया करें? इसको इस्तेमाल करें। दुनिया कमाने से मना नहीं किया, लेकिन प्रायोरिटी वन जो है वो आखिरत होनी चाहिए, और उसके लिए दो टाइम का जिक्र बाकायदगी के साथ, मशायख के साथ मजबूत ताल्लुक, इस्तेमाल पे आना, दिल के अंदर अपनी मोहब्बत शेख की पैदा करें। शेख की अहकाम जितने ज़्यादा मानेंगे उतनी ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी, शेख के लिए जितनी ज़्यादा दुआ करेंगे उतनी ज़्यादा दिल में मोहब्बत पैदा होगी, और यह मोहब्बत से ये चीज़ मिलती है। मोहब्बत जो है उसका टर्मिनल जो है उसका साफ रखें, तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला ने अमल की तौफीक अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد، ربنا لا تقتلنا بغيرك ولا تهلكنا بعذابك، اللهم أنت ولي الأمر في سفرك وفي جبرك وفي أهل بابك، عليك توكلنا وإليك نظرنا وإليك المصير. اللهم يا شافي الأمراض أمراض الأمراض، اللهم يا أهل المشكلات يا ضعف البليات يا ضعف القلوب، فارسنا يا غياث مستغيثنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.